पृष्ठ संख्या 45 और एक समर्पित नाटक यात्रा, एक आषाढ़ का एक दिन ब्रैकेट में 1958 ब्रैकेट क्लोज। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का पहला और सर्वोत्तम नाटक ही नहीं, आज के हिंदी नाटक की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि भी है। यह नाटक राकेश को हिंदी के शीर्षस्थ नाटककारों में प्रतिष्ठित करता है और हिंदी नाटक और रंगमंच को भारतीय नाटकों और रंगमंच को समकक्ष लाता है। जिस समय हिंदी में पूर्ण नाटक लुप्त प्राय था, हिंदी रंगमंच पिछड़ा हुआ निष्क्रिय दिखाई देता था और अन्य भाषाओं के नाटक ही हिंदी रंगमंच पर प्रस्तुत होते थे, उस समय इस नाटक ने रंगमंच पर पुनः पूर्ण नाटक की शुरुआत ही नहीं की, बल्कि नाटक और रंगमंच आंदोलन को एक साथ सांस्कृतिक और सृजनात्मक चेतना से संपृक्त करने में अकेला यह नाटक जितना सफल हुआ, आधुनिक युग में अन्य कोई नाटक नहीं। नाटक लेखक के साथ पूरे समूह से समान संवेदनशीलता, सतर्कता, कलात्मक गंभीरता और पारस्परिक सहयोग की मांग करता है। साथ ही नाटक भी अन्य विधाओं की तरह, बल्कि कुछ माने में उनसे भी अधिक प्रभावशाली ढंग से जीवन की सारी विविधता से गहरा साक्षात्कार करा सकता है। आषाढ़ का एक दिन इसका प्रमाण है। हिंदी नाट्य जगत और रंग जगत की सारी जड़ता और प्रचलित रूढ़ियों को तोड़ने वाला यह नाटक राकेश की भारतीयता और आधुनिकता, हमारे अपने परिवेश में से ही समस्याओं से उत्पन्न द्वंद्व को खोज निकालने की आकुलता को प्रत्यक्ष सामने लाती है। अपनी नींव, अपनी परंपरा, संस्कार दृष्टि से एकदम कटकर कुछ बाहरी प्रभावों की चकाचौंध में पड़कर बह जाना, लिख जाना राकेश को कभी मान्य ही नहीं रहा। यहाँ तक कि रंगमंच के विकास के संबंध में भी वह कृत्रिमत्ता से हटकर भिन्न ढंग से सोचते हैं। भूमिका में उनके विचार उल्लेखनीय हैं। हिंदी रंगमंच के विकास से निसंदेह यह अभिप्राय नहीं है कि अति आधुनिक सुविधाओं से संपन्न रंगशालाएं राजकीय या अर्धराजकीय संस्थाओं द्वारा जहाँ तहाँ बनवा दी जाएं, जिससे वहाँ हिंदी नाटकों का प्रदर्शन किया जा सके। प्रश्न केवल आर्थिक सुविधा का ही नहीं, सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा। रंगों और राशियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा, हमारे दैनंदिन जीवन के राग रंग को प्रस्तुत करने के लिए, हमारे संवेगों और स्पंदनों को अभिव्यक्त करने के लिए जिस रंगमंच की आवश्यकता है, वह पाश्चात्य रंगमंच से कहीं भिन्न होगा। इस रंगमंच का रूप विधान नाटकीय प्रयोगों के अभ्यंतर से जन्म लेगा और समर्थ अभिनेताओं तथा दिग्दर्शकों के हाथों उसका विकास होगा। संदर्भ: एक आषाढ़ का एक दिन, दो शब्द, मोहन राकेश, पृष्ठ संख्या 3। पृष्ठ संख्या 46। यह कथन रंगमंच के संबंध में राकेश की चिंतन दिशा, दिलचस्पी और जागरूकता को प्रकट करता है, जिसकी कमी पिछले नाटककारों में दिखाई देती है। जाहिर है कि आषाढ़ का एक दिन की रचना के दौरान राकेश नाटक को रंगमंच से जोड़ने की ओर और रंगमंच की आंतरिक अपेक्षा की खोज की ओर प्रवृत्त थे और इस ओर आश्वस्त भी थे कि संभवतः उनका यह नाटक रंगमंचीय संभावनाओं की खोज में काफी हद तक सहायक हो सके। इस समय जबकि नाटक अनेकों बार बड़ी बड़ी नाट्य संस्थाओं द्वारा विभिन्न निर्देशकों की प्रयोगात्मक कलात्मक दृष्टि के साथ खेला जा चुका है, यह जानी हुई बात है कि एक बार इस नाटक ने विविध रंग मंडलियों को प्रोत्साहित किया। रंग कर्मियों में अधिक कलात्मक कला, गांभीर्य, दायित्व भावना और दृष्टि पैदा की। शिल्पिक साधनों के विकास की ओर ध्यान केंद्रित किया। रंग शिल्प के संबंध में ज्ञान प्रसार किया। अच्छे अभिनेताओं का दल तैयार किया। दूसरी ओर अपनी सघनता, तीव्रता में इसने हिंदी नाटक को अधिक सार्थक रूप दिया। नाटक की भाषा में स्थूल धारा प्रवाह शैली, वक्तव्य या भाषण शैली के स्थान पर सूक्ष्म सांकेतिक अभिनयोचित सारे गुण लाकर नाट्य भाषा का एक आदर्श प्रस्तुत किया है और पहली बार नाट्य समीक्षा के सारे मानदंड बदल डालने की आवश्यकता का अनुभव कराया है। नाट्य समीक्षा में अंतर आया भी। 1958 में ही संगीत नाटक अकादमी द्वारा पुरस्कृत यह नाटक हमेशा एक चुनौती बनकर आया है। नए नए अर्थों को ध्वनित करते हुए, नए नए रंग शिल्प का संकेत करते हुए प्रत्यक्ष रूप में यह नाटक ऐतिहासिक है, लेकिन यह ऐतिहासिक कहने भर को है। असलियत में पूरा नाटक आधुनिक ही नहीं, पूरा यथार्थवादी भी है, क्योंकि प्रसाद के ऐतिहासिक नाटकों से इसका रूप सर्वथा भिन्न है। प्रसाद की तरह राकेश ने न तो अतीत के इतिहास का ज्यों का त्यों विवरण प्रस्तुत किया है, न तत्कालीन घटनाएं दोहराई गई हैं, न ऐतिहासिक और काल्पनिक पात्रों का जमघट है, न अतीत के गौरव का मान ही। अतीत के गौरव या सांस्कृतिकता का प्रभाव डालने के उद्देश्य से अति नाटकीयता या भावुकता का आश्रय भी नहीं लिया गया है, क्योंकि प्रसाद के नाटकों की सोद्देश्यता और रस योजना इसमें नहीं है। यह युग का अंतर भी कहा जा सकता है। राकेश ने आधुनिक मानव के द्वंद्व और जटिलता को ही पकड़ना चाहा है, इसीलिए यहाँ ऐतिहासिकता और आधुनिकता का समन्वय नहीं है, ना ऐतिहासिकता की प्रामाणिकता और युगीन समस्याओं के संकेत अलग-अलग दिए गए हैं, बल्कि आरंभ से अंत तक बहुत अधिक सूक्ष्म स्तर पर यह नाटक आज के यथार्थ को, आधुनिकता को व्यक्त करता चलता है। यही राकेश मौलिक और ज्यादा आधुनिक है। सफलता असफलता का प्रश्न अलग है। अपने अगले नाटक लहरों के राजहंस की भूमिका में राकेश जब यह कहते हैं कि इतिहास या ऐतिहासिक व्यक्तित्व का आश्रय साहित्य को इतिहास नहीं बना देता, इतिहास तथ्यों का संकलन करता है, एक समय तालिका में प्रस्तुत करता है। साहित्य का ऐसा उद्देश्य कभी नहीं रहा। पृष्ठ संख्या 47। इतिहास के रिक्त कोष्ठों की पूर्ति करना भी साहित्य का उपलब्धि क्षेत्र नहीं है। साहित्य इतिहास के समय से बंधता नहीं, समय में इतिहास का विस्तार करता है। युग से युग को अलग नहीं करता, कई कई युगों को एक साथ जोड़ देता है। इस तरह इतिहास के आज और कल नहीं रह जाते। समय की असीमता में कुछ ऐसे जुड़े हुए क्षण बन जाते हैं जो जीवन को दिशा संकेत देने की दृष्टि से अविभाज्य हैं। इस तरह साहित्य में इतिहास अपनी यथा तथ्य घटनाओं में व्यक्त नहीं होता, घटनाओं को जोड़ने वाली ऐसी कल्पनाओं में व्यक्त होता है जो अपने ही एक नए और अलग रूप में इतिहास का निर्माण करती है। इसीलिए जो आषाढ़ का एक दिन नाटक और उसके नायक कालिदास को ऐतिहासिक नाटक और ऐतिहासिक व्यक्तित्व समझ कर ही देखेंगे, वह उनकी एक नितांत भ्रामक दृष्टि होगी और उनका नाटक की आत्मा तक, मौलिकता तक पहुंचना भी मुश्किल होगा। एक दृष्टि परिवर्तन का संकेत यहाँ भी है। आषाढ़ का एक दिन कवि कालिदास के जीवन से संबंधित नाटक है। लेकिन नाटक कालिदास के कवि रूप में प्रसिद्ध होने के बाद उतना नहीं है जितना एक बनते हुए कवि और प्रसिद्धि के चरम शिखर तक पहुंचने वाले कवि का है, जिसमें राकेश का ध्यान अधिक केंद्रित हुआ है उसकी प्रेयसी मल्लिका पर। मल्लिका गांव की एक सीधी सादी भाव प्रेममयी समर्पण भावना से युक्त लड़की है। भावना में एक भावना का वर्ण करने वाली, अपनी कोमल अनश्वर पवित्र भावना से प्रेम करने वाली और कालिदास से अपने संबंध को और सब संबंधों से बड़ा मानने वाली, जिसकी केवल एक ही आकांक्षा है कालिदास के व्यक्तित्व को अधिक पूर्ण देखने की। अपना सर्वस्व समर्पित करके वह कालिदास को महान कवि के रूप में देखती है और एक तरह से पूरे नाटक पर उसकी कोमल समर्पणशील व्यक्तित्व छा जाता है। आरंभ से अंत तक छाता चला जाता है और लगता है जैसे यह मल्लिका का नाटक है, कालिदास का नहीं। कालिदास के रचनात्मक व्यक्तित्व की मूल प्रेरणा यही मल्लिका है। उस पूरे परिवेश का वह जीवंत तत्व है। वह कश्मीर का शासक बनकर चला तो, लेकिन अधिकार सम्मान सब कुछ मिलने पर भी सुखी नहीं हो पाता, बल्कि अपने को खंडित और टूटा हुआ पाता है और अंत में मल्लिका को अपनी सहानुभूति मात्र देकर अपने आप को स्पष्ट करके चुपके से चला जाता है। इस माने में यह कालिदास और मल्लिका का नाटक है, लेकिन वस्तुतः यह आधुनिक मानव की व्यवस्था, उसके अंतर्द्वंद का, उसकी जटिलता का नाटक है। कालिदास के माध्यम से वर्तमान स्थिति पर बल देते हुए राकेश ने दिखाना चाहा है कि एक सृजनशील कलाकार किस तरह व्यवस्था द्वारा कुचल और तोड़ दिया जाता है। आज के मूल्य बोध से युक्त असाधारण कवि या साहित्यकार न व्यवस्था को एकदम छोड़ पाता है और न उससे समझौता करते हुए चल पाता है। कालिदास का अंतर्द्वंद और टूटन आज के साहित्यकार का द्वंद और पीड़ा है। इस संदर्भ में राकेश का एक लेख साहित्यकार की समस्याएं ध्यान में आ जाता है, जो एक साहित्यिक गोष्ठी ब्रैकेट में चंडीगढ़ ब्रैकेट क्लोज में पढ़ा गया था और जिसमें उन्होंने बड़ी संजीदगी से विचार किया था कि एक साहित्यकार की मूल समस्या है साहित्यकार के रूप में अपना व्यक्तित्व बनाए रखने की। संदर्भ एक, लहरों के राजहंस, भूमिका, पृष्ठ संख्या 9।